इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई सफाई सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शाने हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी।
नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, इतिहास गवाह है इस बात का कि सत्य और निष्ठा से अगर कोई काम किया जाए तो वह ज़रूर सफल होता है। और दादी जी के जीवन में तो ऐसी अनेकों मिसाल देखने को मिलती हैं। आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा और सुना कि परमात्मा की प्रेरणा से बड़ा पहाड़ जैसा विघ्न भी राई के समान बन जाता है। आज फिर से हमारे साथ आदरणीय रतन दादा जी उपस्थित हैं और दादी जी के साथ के और भी अनुभव हमारे साथ आप शेयर करेंगे। दादा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति।
ओम शांति
जी। दादाजी, जैसे लास्ट टाइम आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि दादी जी की प्रेरणाएं और परमात्मा की विशेष सहयोग से किस तरीके से आपने ग्लोबल कॉपरेशन हाउस का जो निर्माण हुआ, सभी ब्राह्मणों ने लंदन में बनाया ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, तो हम सब इतने उमंग उत्साह से आपकी सारी बातें हमने सुनी और बहुत अच्छा लग रहा था हम सबको। लेकिन उसके बाद भी सेवाएं और बढ़ी और जैसे ग्लोबल रिट्रीट सेंटर जो है ऑक्सफोर्ड में बना, तो उसका भी अनुभव हम आपसे सुनना चाहते हैं कि वो कैसे हुआ, वो कार्य कैसे संपन्न हुआ। और फिर उसमें भी विघ्न तो ज़रूर आते ही हैं ईश्वरीय कार्य में, तो उन विघ्नों को कैसे आप सभी ने पार किया, तो उसका भी अनुभव हमें बताएं।
जब मैं ज्ञान में आया तो यज्ञ की स्थापना और सेवा में जो विघ्न आए वो मैं सुनता था, बहुत रुचि आती थी सुनने में
जी।
और नशा भी चढ़ता था। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि यज्ञ की सेवा में जब मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया तो मेरे को इतने बड़े बड़े विघ्न आएंगे। तो जैसे ही ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस तैयार हुआ मैं मधुबन में गया तो बाबा ने भरी सभा में मेरे तरफ देखा। मुरली के टाइम में जब मुरली समाप्त हुई मेरे तरफ देखा, बोला रतन, मेरे नाम से बोला, रतन आपने तो कमाल करके दिखाई। तो मैंने कहा बाबा को, बाबा आपकी कमाल, मेरी कमाल नहीं है, आपके सवाय मैं कुछ नहीं कर सकता
जी।
तो दादी प्रकाश मणि बाजू में बैठी थी, बोले नहीं नहीं आपने कमाल करके दिखाई। तो उसके बाद मीटिंग हुई मधुबन में, पांडव भवन में, कि आगे हमको कोई प्रोजेक्ट करनी है। हमारे यहाँ विश्व में कोई भी रिट्रीट सेंटर वो टाइम नहीं था। और मेरे को मीटिंग करके सब महारथियों ने बोला कि आपके ये प्रोजेक्ट है, आप निमित्त बन के विश्व में जो पहला रिट्रीट सेंटर हम बनाएंगे या खरीद करके करेंगे उसके निमित्त बनो। चाहे आप बनाओ चाहे खरीद करो, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं लेकिन आप निमित्त बनो।
हाँ।
मैं गया लंदन में वो वरदान लेके
जी
बाप दादा से और सब महारथियों से दादियों से, तो मैंने स्थान ढूंढना शुरू किया
जी।
क्योंकि बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। तो फिर हमने बोला इसमें टाइम लगता है, हम खरीद करेंगे और फिर इसको ठीक ठाक करेंगे। ऐसे करके हर हफ्ते हम जाते थे कोई ना कोई स्थान जो बिक्री सेल में होते थे, कभी कभी कोई बोर्डिंग स्कूल होते थे, कभी कभी कोई बड़ा होटल होती थी जो बंद हो गई, कभी कभी कोई बड़ा कम्युनिटी सेंटर होता था
जी,
कभी कभी कोई ओल्ड पीपल होम होता था जो बंद हो गया था बिक्री करने। भिन्न भिन्न स्थान लंदन से 1-2 घंटा की ड्राइविंग से दूर हम जाते थे। दादी जानकी का बहुत उमंग साथ था, बहुत
जी।
वो भी चलती थी हमारे साथ।
अच्छा। बोला
चलो हम मैं भी चलूँगी। तो हम जहाँ भी जाते थे मैं स्थान ढूंढता था और फिर दादी भी चलती हमारे साथ
जी,
जहाँ भी जाते थे। मार्च अप्रैल से हम अक्टूबर तक कई स्थान देखे लेकिन वो पसंद ही के नहीं थे। हमारे भ्रमणों के जो रिक्वायरमेंट थी उस अनुसार वो नहीं थे। आखिर में अक्टूबर का मास आ गया, कोई स्थान हमको नहीं मिल पाया। तो दादी जानकी बोले जल्दी करें जल्दी करें, 6 मास हो गया है कोई स्थान नहीं मिला है। तो एक स्थान देखा जो मुझे पसंद नहीं था, कि दादी ने बोला कोई नहीं मिलता ये ले ले, तो बताने की कहानी का टाइम नहीं है। तो वो ठीक नहीं था।
हाँ।
दादी बोले मिलता नहीं है क्या करें ये ले ले। वो मकान 20-30 साल खाली पड़ा था
जी।
और पूरा टूटा फूटा, खाली 4 दीवारें थी, नहीं खिड़कियाँ, नहीं दरवाजे, नहीं कोई भी बाथरूम, कुछ भी नहीं, खाली 4 दीवारें और छत। बहुत साल से खाली पड़ा था, कोई यूज नहीं करता था। दादी बोले वो ले लें। तो जैसे करके मैंने वो मकान की जांच शुरू किया गवर्नमेंट के साथ कि ये लगा कि ये मकान हमारे काम का नहीं है, क्योंकि रास्ता नहीं है, हाईवे नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, नवा हाईवे बनाना पड़ेगा, 1 माइल दूर है हाईवे से, बहुत खर्चा होएगा और ठीक ठाक करने में 3-4 साल लग जाएगा। तो दादी बोले ले लो और क्या करें, और तो नहीं मिलता है। तो एक दिन मैं दोपहर को सब कागज चेक करके हमारे ऑफिस ग्लोबल हाउस में आया, रेस्ट किया और मैंने बोला अभी हमको बाबा को बोला, बाबा अभी बाबा आप ही है, हमको इससे कोई तरीके से स्थान दिलाएंगे
जी।
क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होएगा और उसके साथ बनाने ठीक करने में भी बहुत साल लगेंगे और गवर्नमेंट में परमिशन लेना बहुत मुश्किल है
जी,
नवे रास्ते बनाने पड़ेंगे, वो करना पड़ेंगे। ऐसा करके मेरा मथा काफ़ी वो टाइम भारी हो गया था।
हाँ जी।
क्योंकि गलत स्थान था। ऐसा करके बाबा को याद करके दोपहर का टाइम थोड़ा रेस्ट करता हूँ 1 घंटा
जी।
तो ऐसा करके मैं थोड़ा रेस्ट करने गया बिस्तरे पे, बाबा को बोला बाबा अभी इसको आप कोई मेरे को मदद करनी है, और कोई स्थान दिलाओ तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद फोन आया, टेलीफोन, हमारा कोई भाई पहचानने वाला, उसने बोला एक मकान ऑक्सफोर्ड में सेल पे है और बहुत सुंदर मकान है, पहले जमाने में वो पैलेस होता था, क्वीन विक्टोरिया, किंग एडवर्ड जो बाबा याद करता है मुरली में, वहाँ रहते थे।
अच्छा
70 एकड़ का बगीचा है सुंदर।
ओके।
पीछे नदी रिवर थेम्स बह रही है, ब्यूटीफुल व्यू है, चारों ओर हरियाली, 100 कमरे है, 70 बेडरूम्स है, हर एक बेडरूम में अटैच बाथरूम है, क्योंकि वहाँ चुने मकानों में बाथरूम अटैच नहीं होती थी, लेकिन ब्राह्मणों की रिक्वायरमेंट थी कि बाथरूम हो, और कॉन्फ्रेंस हॉल है वो ऐसा बताया, सेमिनार रूम। तो लंदन से 1 घंटे का ड्राइव, 100 किलोमीटर हाईवे में
जी।
मैंने कहा ये तो मकान ठीक है बिल्कुल। तो मैंने बोला मेरे को ब्रोशर भेजो, बोला मैं कोरियर द्वारा ब्रोशर भेजता हूँ। नेक्स्ट डे ब्रोशर भेजा, बहुत अच्छा मकान। फिर हमने वही दिन एजेंट से बात करके मकान देखने गए। मकान देखने गए तो टाइम में शील दादी आप जानते होंगे कि नहीं,
जी, जी, जी।
वो लंदन में थी, उसको ट्रांस में जाने की, बाबा के साथ मिलने की गिफ्ट थी
जी।
बहुत टाइम जाती ट्रांस, जैसे गुजरात दादी जाती है ना वो टाइम में। तो फिर वो देखा, उसको दिखाया, बोला बहुत अच्छा, उसको लेके गया साथ में। दादी जहांगीर लंदन में नहीं थी, वो बाहर गई थी, तो उसको दिखाया, उसको पसंद आया बहुत। और भी एक दो बहनों को लेके गया, उनको पसंद आया। दादी जहांगीर आने वाली थी 2 दिन के बाद
जी।
तो उसको मैंने फोन पे बोला ये मकान देखा बहुत सुंदर है। बोला एयरपोर्ट से जब भी मैं आऊँ परसों सीधा ही वहाँ जाके मकान देखेंगे। तो एयरपोर्ट से दादी जहांगीर को लेके सीधा वहाँ गए वो पैलेस देखने के लिए। दादी को पसंद आया, पसंद तो आ गया। दादी बोला बस आपकी मर्जी, आपको ये वो मकान पसंद नहीं है, ये पसंद है, ये भी अच्छा मकान है बहुत, आप आगे बढ़ो। मैंने एजेंट को फोन किया कि हमको मकान पसंद है। तो एजेंट ने बोला आप तो थोड़ा टू लेट आए हो, मकान तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट सेल के लिए और पार्टी के पास चले गए हैं।
अच्छा।
तो आपको हम नहीं दे सकते। अभी इतना सुंदर मकान, और वो मकान जो पहले वाला जो था जूना मकान, वो हमको कैसा भी करके नहीं लेना था, उसके बचाव के लिए अभी ये बोले मकान बिक्री हो गया, नियरली बिक्री हो गया। तो मैंने कहा बाबा ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। दादी जान की बोलेगी अभी ये नहीं मिलता है तो वो दूसरा ले लो, पहले वाला जूना मकान। बाबा को याद किया, एजेंट नहीं माने। आखिर में बाबा को याद करते करते 3 दिन उसको रोज फोन किया तो बोला कि अच्छा मैं मकान के मालिक को फोन करता हूँ, ये कंडीशन है, अगर आप 7 दिन में ये मकान कॉन्ट्रैक्ट सही करेंगे तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। मैंने कहा मंजूर है, ठीक है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भेजे और 7 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सही करना था। अभी इतना बड़ा मकान जिसमें हमको भिन्न भिन्न परमिशन चाहिए, चाहे गवर्नमेंट की लैंड रजिस्ट्री, टाइटल डीड्स, लैंडलॉर्ड की परमिशन, डॉक्यूमेंट्स 200-400 पेज डॉक्यूमेंट होती है, और उसके जवाब आए गवर्नमेंट से, प्लानिंग परमिशन चाहिए, वो चाहिए, कम से कम उसमें 3 मास चाहिए
जी।
तो मैंने वकील को बोला जल्दी करो, हमारे वकील को, तो बोला कि मैं करता हूँ, मैं सबको लेटर लिखता हूँ, उसको मिलने गया। 7 दिन हो गया तो एजेंट का फोन आया, मकान के एजेंट का, बोला 7 दिन हो गया है, आपको कॉन्ट्रैक्ट सही करना है। ठीक है करूँगा, बाबा की ब्लेसिंग थी और बाबा में विश्वास था। वकील को फोन किया तो बोला कैसे करेंगे, बहुत खतरा है, ये कागज हमने चेक नहीं किया, जवाब नहीं आया गवर्नमेंट से, ऐसे ऐसे सब जवाब नहीं आए, तो बहुत खतरा है। ये कैसे सही करेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं करो, और मुझे ये पता था अगर मैं सही नहीं करूँगा तो मकान हाथ से चला जाएगा, फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वकील बोल नहीं करो। मैंने कहा वकील सुनो मेरी बात, आप वकील हो ना, मेरे साथ सुप्रीम वकील है
जी,
वो बोलता है करो
जी।
वो बोले फिर भी हमको एक घंटा आके मिलो। वहाँ मीटिंग रखी थी बोर्ड रूम में, जहाँ उनके वकील भी थे, मकान के मालिक थे, एजेंट सब आए थे। टाइम रखा था 3 बजे का, दोपहर का, मंडे का। बोला उनको बोलो 4 बजे आए, 1 घंटा मेरे से मिलो। उनका ठीक है मिलूँगा। 1 घंटा मिला, बोले नहीं करो, मैं राय देता हूँ, आप बड़ी रिस्क ले रहे हो ऐसा ही करके। कागज़ कुछ भी नहीं, जवाब आए, टाइम लगता है 2-3 मास। मैंने कहा नहीं, करना ही है, कैसा भी करके करना ही है
जी।
अच्छा, हमको सही करने के 28 दिन के अंदर फुल पैसा देना पड़ता है।
जी,
कॉन्ट्रैक्ट सही किया तो वो टाइम हमने वो मकान नेगोशिएट जो किया था ना, मकान के मालिक के साथ, बाबा ने ब्लेसिंग दिया है इकोनॉमिकल का रोल, तो उन्होंने लिया था 5 साल पहले 60 करोड़ रुपए में
जी,
और हमने उसके साथ सौदा किया 15 करोड़ रुपए में
ओके।
खरीद करने का। बाबा ने ब्लेसिंग दिया हर एक बात में, आप इकोनॉमिकल का सफलता पाएंगे। तो हमारे पास बैंक में खाली 5 करोड़ रुपया था, 10 करोड़ रुपया नहीं था
जी।
तो मैंने दादी जानकी को बोला देखो हमारे को 10 करोड़ चाहिए 28 दिन के अंदर, अगर हमको 28 दिन के अंदर 10 करोड़ नहीं आ गया तो न सिर्फ मकान भी जाएगा, हमने जो 2 करोड़ डिपॉजिट दी है कॉन्ट्रैक्ट सही करने के लिए वो भी चली जाएगी। तो दादी ने बोला अभी बाबा के पास जाएं, दादी जानकी ने बोला। तो शील दादी वहाँ थी वो टाइम में
जी।
तो हम तीनों गए बाबा के कमरे में,
हाँ।
ग्लोबल हाउस में, हम नीचे बैठे तीनों, बीच में शील दादी बैठी, एक बाजू मैं बैठा फ्लोर पे, एक बाजू दादी जानकी बैठी। फिर वो गई बाबा के पास ट्रांस में, वतन में गई तो बाबा को बताया मेरा संदेश ये बात है, हमको 5 करोड़ है, 10 करोड़ चाहिए 28 दिन के अंदर मकान लेने के लिए, रतन ने अच्छा सौदा किया है और बहुत सुंदर मकान है, हाथ से छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो फिर जैसे दादी ऊपर ट्रांस में थी, मेरा हाथ पकड़ा एक हाथ और दूसरा हाथ दादी जानकिया पकड़ा, पर ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसे ऐसे ट्रांस में
जी।
जब ट्रांस से वापस आई तो मैंने पूछा शील दादी से बाबा ने क्या बोला, तो बाबा ने बोला कि रतन को बोलो 5 करोड़ का प्रबंध मैं करूंगा, बाबा करेगा, और 5 करोड़ का हम दोनों रतन और दादी जानकी इकट्ठा करके उनको करना है ब्राह्मणों के सहयोग से। ये बाबा का संदेश आया।
अच्छा।
इसके लिए 5-5 कर रही थी, ऐसा हाथ मिला के 5-5 कर रही थी। तो बाबा का ये संदेश बताया, तो ये संदेश बाबा का लेके हम गए, कॉन्ट्रैक्ट सही किया। 12 घंटे की मीटिंग रही, वो भी नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है। 4 घंटे मीटिंग, 4 बजे दोपहर को मीटिंग शुरू हुई, सुबह को 4 बजे मीटिंग खत्म हुई। 12 घंटा उसमें न कुछ पानी पिया, न चाय, न भोजन, कुछ नहीं। 12 घंटा के बाद कॉन्ट्रैक्ट सब चेक करके, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक चेक करके उनका वकील, हमारा वकील, मैं, उनका एजेंट बैठ के कॉन्ट्रैक्ट सही किया। फिर उनको 10% पैसा देती है डिपॉजिट का, वो दिया तो उसका ये अर्थ हुआ कि मकान हमारे हाथ से नहीं चला जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन भी हम रुकते थे तो दूसरी पार्टी मकान लेके जाती थी, इसलिए हमको 12 घंटा। तो कमाल बाबा की ऐसा 12 घंटा मीटिंग रही, जैसे मीटिंग ख़त्म हुई तो मकान का मालिक मेरे पास आया, बोला पता है हमने क्यों 12 घंटा रात को बैठ कर आपके साथ मीटिंग की है? मैंने कहा बताओ, मुझे तो और भी पार्टी है, मैं क्यों आपके साथ इतना रात को टाइम गंवाऊँ? क्योंकि मेरे को बहुत वाइब्रेशन आ रही थी आपको देख के, बहुत अच्छी शांति की वाइब्रेशन आ रही थी। मैंने कहा अगर हमको धंधा करना है तो ऐसे ही करना है और किससे नहीं करना, बाबा की कमाल
जी जी।
उसके बाद नेक्स्ट वीक फोन आया एक भाई का कि मेरे को आपको 5 करोड़ रुपया भेजना है, ब्राह्मण भाई है। क्या बात है, आप मकान ले रहे हो ना रिट्रीट सेंटर, तो मेरे को टचिंग आई है कि मैं आपको 5 करोड़ भेजूं, बाबा की कमाल
जी जी जी।
बीके भाई, उसने नेक्स्ट वीक 5 करोड़ रुपया भेजा, बोला बैंक का डिटेल बताओ मैं 5 करोड़ भेजूंगा। तो 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ हमने ब्राह्मणों के सहयोग से इकट्ठा किया 28 दिन में, फिर कॉन्ट्रैक्ट सही करने के लिए पैसा तो आ गया। फिर नेक्स्ट वीक जो कॉन्ट्रैक्ट सही किया हमने, इतना बड़ा पैलेस जो सेल पे जाता है, तो वो सेल पे मीडिया वाले बहुत इंटरेस्ट होता है उनका, तो मीडिया वाले ने टीवी में और न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आया कि ब्रह्मा कुमारीज ये मकान ले रही है। टीवी पे भी आया, क्योंकि इतना सुंदर पैलेस अभी कभी भी मार्केट में आता है, सेल होता है तो न्यूज़ हो जाती है
जी,
फेमस पैलेस। और उन्होंने क्या लिखा कि ब्रह्मा कुमारी ये मकान ले रही है, बोल रही है अभी विनाश होने वाला है। और वो विनाश की सामग्री वहाँ रख रही है।
अच्छा।
दादा लेखराज को विजन आई थी विनाश होने वाला है, और उसने उसके लिए ये स्थान लिया है कि अंदर सब बॉम्ब्स वगैरह इकट्ठा करके रखेंगे। टीवी पे भी आया। तो वहाँ जो ये जो मकान है, गांव बाजू में गांव है,
हाँ जी,
चारों बाजू, तो गांव में जो रहते थे ना वो सब घबरा गए, वो बोले हम ब्रह्मा कुमारी को यहाँ नहीं आने देंगे कभी भी, आएंगे तो हम पिकेटिंग करेंगे, उनको अंदर नहीं आने देंगे, पिकेटिंग करेंगे। अच्छा, तो ये इतना बड़ा विघ्न आ गया। तो सब जो हमारे कई भाई बहने निमित्त जो थे सब डर गए, बोले ये मकान नहीं लियो, छोड़ दो, इसमें ये इतना विघ्न आता है, इतने ये रिस्क है, वो है वो है, हम नहीं जाएंगे मकान में वो सेवा के लिए, वो पिकेटिंग करेंगे, वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा आप डरते क्यों हो, भगवान हमारे साथ है। अच्छा, फिर मकान टूटा फूटा था, 2-3 साल खाली पड़ा था, अंदर हमने उसको ठीक ठाक करने में 6 माह लग गया, अंदर पेंटिंग किया, थोड़ा रिपेयरिंग किया, बाथरूम का रिपेयरिंग, फर्नीचर वगैरह कारपेट सब डाला, 6 माह लग गया। तो दादी गुलजार को निमंत्रण दिया उद्घाटन के लिए
जी,
जनवरी में हमको चाबी मिली, जून में उसका उद्घाटन के लिए बुलाया।
कौन से ईयर की बात है ये?
93 की बात है। हाँ
जी,
93 जून में। तो अभी 2000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बहुत बड़ा मंडप लगाया, बगीचे बड़ा है बहुत, 2000 का, 3 दिन का प्रोग्राम रखा
जी,
3 दिन का प्रोग्राम रखा, 2000 यूके से और विदेश से भी कहीं
जी
ब्राह्मणों को बुलाए, दादी गुलजार भी आई उद्घाटन के लिए। तो फिर क्या हुआ कि जून तक हमारे को गवर्नमेंट की परमिशन नहीं आई, हमने एप्लीकेशन डाली तो अभी विघ्न डालने शुरू किया, न्यूज़पेपर में देखा ये ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या कर रही है, तो पूरी बहुत गहराई चेकिंग कर रहे थे हमारे संस्था के बारे में. तो 6 मास तक हमको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं आई. 6 मास. 2 दिन पहले उद्घाटन के मैंने बाबा को बोला अभी तक परमिशन नहीं आई है, यहाँ 2000 की संख्या इकट्ठी होगी, सब सफ़ेद कपड़ों में होंगे और 50 कोचेज आएंगे और 300-400 कार्स होएगी. अब गांव वाले सब देखेंगे क्या हो रहा है, ये सफ़ेद कपड़े वाले क्या कर रहे हैं इधर. जब भी काम चलता था सब क्वार था, चारों बाजू जो गांव में रहते हैं 30-40-50 मकान होते उनके तेरे गांव वालों के, तो वो देखेंगे क्या अचानक क्या हुआ, इतने कोचेज आ गए, इतने वो आ गए, पता नहीं अभी विनाश की सामग्री के लिए अंदर कुछ बम तो रखेंगे अभी, तो आके पैकेटिंग करेंगे. तो अमृत वैली मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो अभी 2 दिन के बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है, परमिशन नहीं आई है, अगर परमिशन नहीं आएगी उसके पहले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. मैंने आपके निश्चय के ऊपर विश्वास करके ये सब किया है, अभी आपको मदद करनी है
जी,
बाबा को बोला. नेक्स्ट डे मैं गया ऑफिस में, लेटर आ गया गवर्नमेंट का, आपको परमिशन मिल गई है. तो कहने का भाव ये है कि विघ्नों के ऊपर विघ्न आते हैं, परंतु अगर हमारे में हिम्मत है, अटल निश्चय है बाबा में, और धीरता है हर बात में सामने करने में, तो बाबा की मदद असंभव को भी संभव कर सकती है
जी.
तो इसके लिए मैं नहीं करता हूँ, मैंने किया, कुछ नहीं किया, बाबा के साथ मिलके कम्बाइन रूप में निमित मैं रहा, लेकिन करण करम हर बाबा है. तो भगवान में जिनका भी अभी कोई
डाउट है या कुछ है,
विश्वास नहीं होए
जी,
ये प्रैक्टिकल अनुभव सुनो और देखो भगवान क्या नहीं कर सकता. ऐसे अनुभव मेरे को बहुत है, लेकिन एक अनुभव मैं आपको बताया, इसके लिए ये खुशी है कि आप कुछ से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मंगसा होएगा आपको, तो आपको भी बाबा की, भगवान की बहुत मदद मिलेगी. ओम शांति.
ओम शांति. थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब. आपने हमारे साथ बहुत सारे अनुभव शेयर किए हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में भी आपने ऐसे ही असंभव बातें कैसे संभव हो जाती हैं वो भी हमने आपसे जाना. तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बहुत कुछ प्रेरणाएं आपसे मिली होंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, नन्ही सी चींटी भी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. दादी जी की और इन सभी भाई बहनों की हिम्मत को हम सलाम करते हैं. दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में. आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं. नमस्कार. ओम शांति.